राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 नवंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात है तो बोलो ही, अभी क्या बात है, क्या कह रहे हैं?
आपने निषेधात्मक साधन बताया, तो अब इधर हम तो विधिवात्मक साधन करते हैं जो
अच्छा, ये भी अच्छा है। निषेधात्मक करना है तो वो विध्यात्मक और निषेधात्मक दोनों साधन है। निषेधात्मक दुर्गुण दुराचारों को दूर करने के लिए निषेधात्मक, जैसे सत्य भाषण है विध्यात्मक है, झूठ नहीं बोलना है निषेधात्मक है। तो त्याज में निषेधात्मक बढ़िया है, नहीं विध्यात्मक करो। निषेधात्मक यही है कि जैसे गीता पढ़ना है तो गीता निषेधात्मक लाना ही हो, लाने जरूरत नहीं है तो फिर गीता से विरुद्ध पढ़े वो नहीं पढ़ना है। उपन्यास है, गर्भ है, ऐसी ऐसी चीज ये नहीं पढ़नी है अपने को, उनका निषेध करना है। इसमें निषेध ये लाना है। और परमात्मा है तो ये विध्यात्मक है, और संसार नहीं है, असत्य नहीं है, निराधार ये नहीं है, ये निषेधात्मक है। भगवान ने योग के दो अर्थ किए हैं, एक तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये निषेधात्मक है, और समतम योग उचित ये विध्यात्मक है। समता का नाम योग है, और दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग है ये निषेधात्मक, उसका नाम योग है। मानो दुख के संयोग का वियोग हो जाए तो समता आ जाएगी, या समता आ जाएगी संयोग वियोग हो जाएगा, दोनों को योग दिया हुआ नाम। और बोलो कोई बात।
चुप साधन कैसे हो?
चुप साधन तो, चुप साधन कैसे हो? चुप साधन में एक बात खास जानने की है, आप कुछ भी नहीं करते हो स्वतः स्वाभाविक। जब आप नींद लेने के लिए उद्यत होते हो तो नींद के लिए कोई उद्योग करना पड़ता है क्या? कोई चिंतनक परिश्रमक कुछ करना पड़ता है क्या? मानो कुछ भी नहीं करना है यही नींद लेने का उपाय है। मन सबसे निवृत्त होना यही है, तो स्वतः जो संसार से निवृत्ति है उसमें स्थित रहना है, ये चुप साधन है। स्वाभाविक संसार कोई बात याद नहीं है तो ये चुप साधन नींद से उठने पर सुगमता से होता है। कोई चिंतन नहीं, कोई स्वप्न का सुसुप्ति का जागृत का काम करना कुछ विचार नहीं, स्वतः सिद्ध जो नहीं करना है वो सुख साधन है। जान करके क्रिया का निवृत्त करना वो सुख साधन नहीं हुआ है, ख्याल में आएगा नहीं? मानो स्वाभाविक स्वतः भी हमारा कोई फूलना नहीं है, कोई याद नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे चुप रहना है। स्वभाव सिद्ध, स्वतः सिद्ध। देखो
हम जागृति अवस्था में नाम स्मरण करते हैं और करते करते सो जाते हैं, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो नाम स्मरण चालू करते हैं।
बहुत ठीक है।
तो मध्यान्ह काल जो है स्वप्न और सुसुप्ति ये काल बीत रहा है तो नाम स्मरण होता है कि बंद पड़ता है?
ज्यादा अभ्यास होने से उसमें होता है, हर एक के लिए होता है। अभ्यास ज्यादा हो जाने पर ये उसमें भगवान की स्मृति रहती है, तो नाम जब ज्यादा होने से नींद में भी नाम जब होता है तो उसकी पहचान क्या है कि जगते ही हम नाम को याद करते हैं, ये नहीं होगा। मन जगते ही नाम जब दिखेगा सोते तब तो निरंतर हुआ है, और अब पकड़ते हैं तो छूटा नहीं, आज महसूस होती है मैं छूटा है, अब फिर नाम सबको शुरू करते हैं। अब ख्याल में आ गए बात हमें मानो नाम जप निरंतर आनारा सुषुप्ति स्वप्न में भी होता था इसकी पहचान है कि जब सुबह नींद खुलती है तो नींद खुलते ही नाम जप हो रहा है ऐसा दिखेगा और ऐसा न दिख करके और नाम जप को याद करते हैं तो सुषुप्ति स्वप्न में नाम से छूटा है अब याद शुरू करते हैं ऐसा इस तरह से ही तत्व ज्ञान होता है परमात्मा का चिंतन होता है तो वो चिंतन स्वतः ही परमात्मा स्वरूप में स्थिति है तो वो नींद जगते ही वैसी स्थिति भी है तब तो बोध हो गया और वो नींद जगने के बाद में फिर विचार द्वारा उस तत्व का विचार करते हैं तो नींद में तत्व नहीं था तो मन तत्व ज्ञान नहीं हुआ अभ्यास चलता है ये पहचान है उसकी फिर खुलासा कर दू जैसे हम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं तो साधन हम करते हैं तत्व के लिए वो तत्व बोध हुआ कि नहीं हुआ इसकी पहचान है तत्व बोध होने पर जगने पर स्वतः ही बिना याद किए तत्व से चली जाती है तत्व बोध हो गया है और तत्व जागृत होते ही उसको हम याद करते हैं उसमें स्थित होते हैं तो अभी तक बोध हुआ नहीं है अब अभ्यास है ये पहचान है जैसे अब अभी वृंदावन में हम रहते हैं तो नींद खुलते ही वृंदावन में है ऐसा भाव रहता तो वृंदावन की स्थिति है और वृंदावन को पकड़ते हैं तो स्थिति नहीं है अब याद करते हैं स्वतः ही मालूम होते वृंदावन में ही हम हैं ऐसा दिखता है स्वाभाविक ही ऐसे नाम जब स्वतः ही हो रहा है मालूम से राम 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 हो रहा नींद खुल से तो हो ही रहा है उस पहले से नींद में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में भी होता था नारायण 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 ये जो कारण निरपेक्ष की बात बताई है ना कारण निरपेक्ष की बात में तो ये स्थिति बहुत जल्दी हो जाएगी कर्ण सापेक्ष में देरी लगती है कर्ण निरपेक्ष में धीरे नहीं लगती है इसका कारण क्या है कि सांसारिक काम जितने हम करते हैं वो सभी हम कर्ण सापेक्ष ही करते हैं कर्ण निरपेक्ष संसार काम होता ही नहीं तो आदत पड़ी हुई है मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम विचार करते हैं तो यही अटकर परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रवण करेंगे मनन करेंगे निरीक्षण करेंगे ध्यान करेंगे समाधि लगाएंगे ये सब के सब कर्ण सापेक्ष साधन होंगे तो इसमें देरी लगेगी और कर्ण निरपेक्ष वो होगा कि भाई जहाँ बुद्धि नहीं लगेगी मन नहीं लगेगा ये सब संसार का अभाव जहाँ पर है वो तत्व स्वतः सिद्ध है तो जो बनाई जाती है चीज वो तो कर्ण सापेक्ष होती है और जो बनी बनाई चीज है उसमें कर्ण का आरंभ थोड़ा सा कर्ण का होता है फिर वो कर्ण निरपेक्ष होता है वो मन वो बनाना नहीं है उसकी तो स्मृति लब्धा जैसे भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा है नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा में आता तो स्मृति लब्धा है ये कर्ण निरपेक्ष है स्मृति प्राप्त हो गई आपको बात पुरानी कोई याद आती है ना अचानक तो उनमें कोई साधन थोड़े ही करते हो उनके मन बुद्धि का चिंतन थोड़े ही करते हो अचानक याद आ जाती है बात बीच में एकदम तो वो स्मृति होती है वो कर्ण निरपेक्ष वही सहज अवस्था है स्वाभाविक सुख साधन वही है जैसे वो याद आवे ऐसे याद है मैंने वहां सत्संग में कहा था कि करते हैं वो नकली होता है वो असली होता है इस दर्श का समावा सत्संग में तो करना होता है वो नकली होता है स्वतः स्वभाव वो असली होता है दृष्टांत दिया था कि हम परमात्मा चिंतन तो करते हैं और संसार का चिंतन होता है, आप सब संसार की बात याद आती है, तो याद आती है वो असली है और करते हैं वो नकली है, तो हमारा संबंध संसार के साथ ज्यादा है और उसके साथ कम है। अब ये चिंतन करते करते अभ्यास अधिक हो जाएगा, श्रद्धा भक्ति अधिक हो जाएगी, तो परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होगा, स्वतः स्वाभाविक ही, और संसार की बातें याद करने पर आवेगी। ऐसी एक बात है, ऐसी
हम जो साधन करते हैं तो बाद में मन का भान चला जाता है, बाद में देह का भी भान चला जाता है, वो 40-45 मिनट तक रहता है, उसके बाद में शांति आ जाती है, वो हमेशा के लिए रुकती नहीं है,
शांति रुकती नहीं,
घंटा दो घंटा रहती है, फिर बाद में
और तो वो गलती होती है, वो जो छूटती है वो गलती है, तो उसके लिए आप भगवान के अर्पित होकर के ऐसे हो जाओ, जैसे पक्षी होता है वो ऐसे उड़ता है, उड़ते 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 अगाड़ी उसे जागरी ये हो जाता है, ये फिर तर रहा है, जैसे पानी पर तर जैसे आकाश में वायु पर तरता है, ऐसे पंख हिलाता नहीं, वो पंख ऐसा करते ऐसे, इस तरह से पहले चिंतन करते करते ऐसे हो जाए, इस तरह से भगवान की अर्पित होकर वैसे ही हो जाए, तो भगवान की अर्पित होने से फिर भी स्वतः होती है शांति, वो बढ़ जाएगी, मन को आप कहता हो ज्यादा देर नहीं है ऐसे मिट जाती है, तो उस वक्त में वो जिस समय में शांति उस समय में भगवान की अर्पित हो जाओ, एक परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे चुप हो जाओ, फिर कोई चिंतन हो जाए तो उसी परवाह मत करो, ध्यान मत दो, ये नहीं मत करो मेरा चिंतन क्यों हो गया, संसार चिंतन हो गया, उसकी परवाह ही नहीं, तुम बेपरवाह जितनी करोगे उतनी वृत्तियां ठीक शांत होगी, ऐसी अवस्था में।
आपने किताब दी थी उसमें मैंने पढ़ा, वो शांति जो आती है उसका सुख नहीं लेना, नहीं तो आगे नित्य योग नहीं होगा, क्या करना चाहिए,
उसको लेना नहीं है, जैसे लोभी आदमी है उसको 10,000 रुपया मिल जाए तो वो अगर ही कमाने की चेष्टा नहीं करता क्या, लाख मिल जाए तो और करता है, रुपया में तो संतोष रहना चाहिए, इस विषय में संतोष नहीं करना चाहिए, सुख तो मिलेगा पर सुख भोगना नहीं चाहिए, राजी नहीं होना कि और अगाड़ी ऐसा और होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, अंतर न पड़ने, ऐसी बात रखने से बढ़ेगा,
शांति हमेशा बने रहेगी,
शांति बने नहीं, शांति और बढ़े, बनी रहे नहीं करना चाहिए और बढ़नी चाहिए, बनी रहे उन्हें मतलब वहाँ स्थिरता होगी, और बढ़नी चाहिए इसमें आगे चलेगा, और बढ़नी चाहिए, ये तो थोड़ी होती है, ये थोड़ा आनंद है, ये तो पूर्ण हुआ ही नहीं है, ऐसी भूख लगनी चाहिए, रहनी चाहिए, तो उनसे आगे बढ़ेगा, फिर मन अगर ही उसको तो अभिलाषा बढ़नी चाहिए, बढ़े फिर वो बढ़ेगी। जैसे देखो एक बात है, इसमें दृष्टांत रूप से बताता हूँ, जैसे अपने पहले चीज की इच्छा होती है, अमुक चीज चाहिए, फिर उसको जैसे हमारे घड़ी चाहिए तो घड़ी की इच्छा पहले हुई, पीछे अपने रुपया चाहिए, रुपया लाने घड़ी लाएंगे ऐसा, और एक ऐसी बात हुई कि कोई चाहना तो है नहीं और रुपये आ गए, अब रुपयों का क्या करें भाई, तो भाई कोई काम फसा हो, एक घड़ी हो तो अच्छी बात है, फिर घड़ लिया, ये दो बात समझेगी नहीं, तो पहले इच्छा होने ये गलती है, वस्तु आ जाए तो उपयोग क्या करे ये बात होनी चाहिए स्वतः, वो जो चीज मिले ये है दरिद्रता, ये दरिद्रता है, और वो दरिद्रता नहीं है, अब आएगी वस्तु क्या उपयोग करे, अपने उपयोग क्या करें भाई, याद गया कैसे एक घड़ी आ जाए तो अच्छी बात है यार, नाम में तो वो दोष ही नहीं है इसमें, वो तो वस्तु आ गई तो उसको उपयोग करते हैं, मन में है ही कि रुपया आवे घड़ी आवे ऐसे उजत करे है ही नहीं उनमें। इसी तरह से कुछ करना है ये मन में रहता है तब तक सुख साधन नहीं होता। करना कुछ भी नहीं है अपने तो है जो स्थित रहना है जो रहना है बस अपने करना क्या है करना करने करना तो प्रकृति में पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति है समाधि तक प्रकृति का कार्य है प्रकृति से अतीत तत्व है। योग दर्शन में दो विभाग होते हैं एक एक निरुद्ध अवस्था होती है एक वित्थान एक समाधि वित्थान जो होता है और पारमार्थिक प्रेम में और ज्ञान में आगे चलते दो अवस्था नहीं होती एक ही अवस्था होती है सज अवस्था स्वाभाविक अटल होती है निरंतर होती है वो स्थिति प्राप्त करना है अपने तो वो प्रारण करना नहीं भगवान के शरण हो जाओ तत्व ज्ञान हो जाए तो उनसे हो जाती है शरणागत से भी हो जाती है वो सर्वथा भगवान के शरण हो गया। इस वास्ते अपने दो प्रकार की निष्ठा बताई है उसमें भक्ति की निष्ठा नहीं है भगवान निष्ठा है वो उनकी खुद की निष्ठा नहीं है लोकेश में दृढ़ निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योगी योगी नाम तो सांख्य सांख्य योग से कर्म योग 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 से ऐसी निष्ठा होती है भक्त भगवान का अर्पण हो गया अब उसकी निष्ठा हो गई। जिस तरह से ब्याह होने के बाद लड़की को कुछ भी चिंतन करना नहीं पड़ता कुछ भी उद्योग करना नहीं पड़ता पति की होने के लिए कोई कसौटी नहीं करनी पड़ती स्वतः वो तो होगी भी ब्याह हो गया बस कसम हो गया ये फिर भूली नहीं होती है। अच्छा उसमें एक बात है मन में जानने की एक हम मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हैं और एक आपके द्वारा स्वीकृति होती है अपने खुद के द्वारा जिसे मैं शिष्य हूँ मगर ये गुरु जी मैं शिष्य हूँ तो ये स्वीकृति होती है मेरा विवाह हो गया मैं विवाहित हूँ ये स्वीकृति होती है। ऐसी स्वीकृति शरणागति हो जाए फिर करना नहीं पड़ेगा सुख साधन हो जाएगा शरण तो हुआ ही मैं भगवान की शरण हूँ मैं तो उनका ही हूँ क्यों परमात्मा का अंश हूँ मैं जिसका अंश उसी का तो बैठ हूँ मैं अमुक का बेटा हो जाए थोड़ा ही उसका तो हूँ ही मैं परमात्मा का साक्षात ऐसे शरण होने पर सुख साधन स्वतः होता है स्वाभाविक सुख साधन होगा। ये आत्मसंस्था मना के थोड़ा लेकिन चिंतित विचार सही एक परमात्मा तत्व ये ऐसे विचार करके कुछ भी चिंतन न करे सुख साधन हो जाता है। परमात्मा के सिवा कुछ चिंतन करे तो परमात्मा चिंतन होगा अचिंतन ही होगा। शरणागत मोक्ष सत्संग कहते हैं शेर जी इसको अचिंत ध्यान कहते थे अचिंत ध्यान है अचिंत कवि पुराणम अनुशासितारम अणु अणियांश मनुस्मृति सर्वश्रेधासार अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तब सब अचिंत्य रूप है वो चिंतन अचिंतन आते ही मन उसके साथ हो जाएगा तो कर्ण सापेक्ष होगा और कर्ण में साथ में नहीं स्वतः होगा तो कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा स्वाभाविक वो है ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है वो हमारे चिंतन से परिपूर्ण है क्या स्वतः है ही वो तो इस बात से चिंतन क्या कर रहे हैं। जैसे दिया सराय में अग्नि है उसको याद नहीं करते हैं दिया सराय अग्नि है जमीन में एक देर अग्नि है ही है इस वजह से सब जगह परिपूर्ण है। जैसे मेहंदी के पत्ते में डाली है ये याद नहीं करने पड़ती किंतु इसमें है ही वो लिख दो जो लाल हो जाएगा सत्य है इसमें ऐसे सब जगह परमात्मा है ये बहुत बढ़िया चीज है। ये भगवान का नाम लेते हुए वो क्रियात्मक साधन करे ना विद्यात्मक साधन में भी परमात्मा परिपूर्ण है पहले से ही मैं तो उसकी चिंतन उसने वृत्ति करी है मैंने वो परमात्मा तो है ही ऐसे है कि निरता जितनी अधिक होगी उतना वो निश्चित सिद्धि हो जाएगी। ये विधि इसी की विधि है कि परमात्मा है, दूसरा नहीं है, संसार नहीं है। जैसे हरे राम है, मैंने बताया था, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हमारा हरे संसार आ गया, हरे कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसके साथ कुछ है ही नहीं, वो ही हुआ है। तो संसार का निषेध हुआ, परमात्मा का विधि हुई, तो दोनों का नाम योग गीता में, दुख संयोग वियोग योग संगीतम समस्तम योग उच्चते, दोनों निश्चित एक ही होगा, निकाल लेते हो जाएगा अंत में साफ सुथरा ही। नारायण 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 नारायण।
क्या भोगों को विषय क्यों कहते हैं?
विषय तो अनुभव होता है, विषय विश्वास कहते हैं। किसी विषय का ज्ञान होता है ना, तो वह है विषयान विश्वत्यज, ये विषय है। मानो परमात्म तत्व है, उसका आप विषय भी कर सकते हैं, और वो स्वतः वो विषय नहीं होता है, और विषय संसार का जितने विषय ही होता है, विषय रहित ही होता ही नहीं है। परमात्मा का विषय करते हो, राम राम कृष्ण करते विषय करते हो, और सब से आप कुछ नहीं करते हो, तो विषय न करने पर परमात्मा में स्थिति होती है, इस बात उसका विषय नाम नहीं है। ये संसार का विषय ही होता है, स्वतः में स्थिति होती ही नहीं, ये तो नश्वर नश्वर है, इस बात विषय कहते हैं।
एक कुछ है कि वो ऋणानुबंध की बात कहीं, तो आप हिंदू समाज में संतति निरोध करते हैं, उनके जन्म लेने वाली शेष संतानें कहाँ जन्म लेती है? तो आपके प्रवचन के माध्यम से सुना है कि वे संतान मुसलमानों के
मुसलमानी शाही वहाँ जन्म,
तो उन फिर आत्माओं का ऋणानुबंध कैसे मिटता है?
ऋणानुबंध ज्यादा ऋणानुबंध होता है ना, उसमें तो तकलीफ होती है, उसमें भी पूरा देखो भगवान जाने। हम जो अपनी बुद्धि से पुस्तकों देख करके विचार करते हैं, अटकल लगाते हैं हम अपनी, है क्या वो भगवान जाने। ऐसी बात है कि ऋणानुबंध किसी का ही हो जाएगा, तो ऋणानुबंध में मैं संतति निरोध किया, तो संतति निरोध कर दिया, इस पर भी कभी कभी जैसे तेल लीक होता है ना, ऐसे विषय लीक होकर के संदर हो जाएगा कभी कभी,
वो कच्ची रह जाती है,
कच्ची रह जाती है, वो बंद में कच्चा रह जाता है, जिनसे कभी कभी संतान हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, वो किसी अपने कुटुम्ब में जिनके वो नसबंदी नहीं हुई है, उस कुटुम्ब में आकर के आपकी अनुकूल से रहकर आपके बेटे की तरह हो जाएगा, ऐसे ही निबंध कर लेगा, दूसरी ऋणानुबंध होगा, वो भी ज्यादा ऋणानुबंध होने रहता हो, थोड़े ऋणानुबंध जन्म नहीं होता है, जन्म का ऋणानुबंध होता है। ऐसा ऋणानुबंध रहने पर आपघात कोई करता है जानकर खुदकशी, तो खुदकशी भी नहीं मरता, वो जहर लेने भी नहीं मरेगा, फांसी भी नहीं मरेगा, क्योंकि दूसरे के साथ ऋण है, तो उस हिसाब से हिल चुका है, मैंने मर नहीं सकेगा पहले, जैसे जन्म में ऐसे मरने में भी ऋणानुबंध के कारण से नहीं मरता, ऐसे वो ज्यादा ऋणानुबंध है, मामला ऋणानुबंध छूट जाता है, वो तो ईसाई में मुसलमानों में वहां जन्म जाएगा, केवल मनुष्य शरीर ही प्राप्त करना है, तो दूसरों जन्म में अपने जन्म में गया। नारायण नारायण नारायण। कर्मण गहना कर्मणों गति, कर्मण गति बड़ी गहरी है, इसमें मैंने अध्ययन किया भी है और करता भी हूँ, कर्मों के विषय में विवेचन बहुत कम आता है, गीता में आया है।